جی بسم اللہ کیجیے.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام
سر. میرا کوشچن ہے سر, مرید اپنے مرشد کے ساتھ ایک گہرا تعلق کیسے بنا سکتا ہے؟
مرید اپنے مرشد کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کیسے بنا سکتا ہے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ اپنا تعلق کیسے گہرا کر سکتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟
سر
میں دیکھیں نا, بچہ وہ کام کرے گا جو ماں کو پسند ہو. وہ کام کرے گا نا جو ماں کو اچھا لگتا ہے. اگر وہ ماں کو فیور ون کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ ہی ول ٹرائی ٹو بی اے گڈ چائلڈ. تو مرشد سے تعلق کو بہتر اور گہرا بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مرشد کریم جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے, اور جس طرح کا عمل وہ چاہتے ہیں اس طرح کا عمل کیا جائے. حضور مرشد کریم نے ایک دفعہ مجھے ایک بات سنائی, کہنے لگے کہ عظیمی بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت مخلص ہیں, لیکن میں جب انہیں کوئی بات کہتا ہوں کرنے کو تو یہ کرتے کچھ اور ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں کیا, تو کہتے ہیں ہم سمجھے تھے کہ آپ ایسا چاہتے ہیں. یعنی ہم اپنی سمجھ کو مرشد کی چاہت بنا بیٹھتے ہیں. اگر ہم اس کام سے باز آ جائیں اور مرشد کی چاہت کو اپنی سمجھ بنا لیں, حضور مرشد کریم چاہتے ہیں کہ عظیمی بچے جو ہیں وہ علم سیکھیں, علم میں دسترس حاصل کریں. ہاں یا نہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عظیمی بچے وہ علم جو حضور قلندر باب اولیاء نے واشگاف کر دیا اس کو حاصل کریں, اور وہ علم جو اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا یعنی قرآن, اس کو سمجھے. تو مجھے بتائیے جب آپ یہ کام کریں گے کہ آپ لوح قلم پڑھیں گے, آپ قرآن پڑھیں گے, تو آپ کو مرشد کریم سے تعلق بہتر ہوگا یا بگڑے گا؟
بہتر ہوگا,
گہرا ہوگا. کیونکہ حضور مرشد کریم سے صرف محبت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان سے عقیدت رکھنا یہ ایک درجہ ہے, لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب آپ علم میں دلچسپی لیں گے. تو جو مرید اپنے مراد کے علوم میں دلچسپی لیتا ہے اس کا تعلق اپنے مرشد سے گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو محض ان کو ایک دعا کو دعائیں کرنے والا ایک بزرگ مان کر ان کی تابے داری کرتا ہے اور ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے, ظاہر ہے کہ ایسے بندے کا جو ان کا علم سیکھنے کا جویا ہے, چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کی نسبت اس کا تعلق گہرا ہوگا یا نہیں؟ Have I answered your question? Are you satisfied of the answer? جی نیکسٹ کوشچن. جی نیکسٹ کوشچن. جی وعلیکم السلام
سر. میرا سوال باتیں میرے مراد ہیں,
इधर आपने अबाउट रूल से जो है रूल्स के बारे में सवाल किया था ना,
किसके बारे में?
सर मुझे आवाज आ रही है आपको?
जी मेरी मुझे आ रही है, मैंने एक लफ्ज नहीं सुना, किसके बारे में सवाल किया मैंने?
ब्रूज
ब्रूज था, ब्रूज
जी
जी
सर। तो
कुरान की आयत है कि जीनत दी हमने आसमान को बुरूज से और छुपा दिया उनको शैतान मर्दूद से। ये वो आयत थी
जी सर।
इसके हवाले से मैंने सवाल पूछा कि ये बुरूज क्या चीज है।
आपने बहुत ही अच्छा भाई बना रहे जी सर। हाँ जी ठीक है, ये साइंस
जी। तो मैंने ये जब सवाल पूछा तो हजूर मुर्शिदे करीम ने फरमाया कि दुनिया को कहते हैं, ठीक हो क्या? अब इसका मतलब है कि अगर हमें गैब की दुनियाएं नजर नहीं आती तो क्या हुए? हम हमारे अलूम पे, क्योंकि आदम की तख्लीक इस तरह से की गई कि आदम अंदर ज्यादा देखता था, आदम को ये सारे अपने इनर में देखने की वजह से इनर की दुनियाएं दिखती हैं। अगर उसके ऊपर शैतानी तर्ज़े फिकर ग़ालिब आ चुकी होगी, क्या होगा? वो बाहर देखने की तरफ मतवज्जो होगा। जन्नत में क्या हुआ? जन्नत में ये हुआ कि आदम जो अंदर देखते थे, शैतान ने उन्हें मजबूर किया कि वो बाहर देखे, ठीक हो गया? लिहाजा यहाँ से आके गड़बड़ शुरू हुई। कुरान कह रहा है कि भी जीनत दी हमने आसमान को बुरूज से, आसमान से मुराद है लाशऊर, यानी समावाद का लफ्ज जो है वो लाशऊर के लिए बोला जाता है, ठीक है? शऊर के दर्जे हैं। अब बुर्ज कहते हैं असल में उस चौकी को जहाँ से नजारा किया जाता है या देखा जाता है। अब हजूर मुर्शिद करीम ने एक लफ्ज बोलकर मुझे मतवज्जो किया कि तुम अपने अंदर की दुनियाएं अगर नहीं देख सकते तो तुम क्या हुए? क्यों जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वाजे हो गई बात आपको?
जहाँ फरिश्तों को पूरे निजाम को चलाने के 20,000 फरिश्ते मामूर हैं, फिर अपने हाथ को काम करके जाते हैं।
हर इंसान पे 20,000 फरिश्ते, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हर इंसान के साथ 20,000 फरिश्ते। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर 20,000 किस्म की सलाहियतें काम कर रही हैं। अब मुझसे कहलवा के जी, मुझसे कहलवा के मुझे सारा इल्जाम मुझे पे धरना चाहते थे।
नहीं,
आई एम ऑनर्ड जी, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल आ रहा है सर, छोटा सा लेकिन पढ़ा ही है। ये 395 सर, ये मेरे मुर्शिद से मुझे हर तरह से इतना नवाजा है कि कोई कमी नहीं रही। जब कुछ तवक्कुफ के बाद इरशाद फरमाया, सदमा तभी तो पैदा होता है जब कोई कसर ना लगता। सर इसको समझा दो।
इस्तग़ना का मतलब है कि बंदे का पेट भरा होगा तो वो मजीद खाने की तरफ नहीं देखेगा, किसी को पुर नजर होना कहते हैं। जब आदमी की नजर भर जाए, जब नियत भर जाए एक चीज से, तो फिर उसकी तलब ही नहीं रहती। यानी अगर आप एक काम को करना चाहते हैं, उसकी तलब आपके अंदर है, तो आपके अंदर इस्तग़ना कहाँ से आ जाएगा? अगर आप एक काम है उसे कर लेते हैं तो शांत हो जाते हैं, तो फिर क्या कैफियत हुई? जैसे अब भूख लगी है, आपने खाना खा लिया, अब फर्ज करें कि आपने आलू छोले खाए, ठीक हो गया, पेट भर गया, अब आपको कोई बिरयानी भी दे तो क्या आपका दिल करेगा खाने को? यानी इस्तग़ना की कैफियत का ताल्लुक पुर नजरी से बहुत ज्यादा है। बंदे को पुर नजर होना चाहिए, यानी किसी चीज की रग़बत न पैदा हो उसमें, यानी रग़बत कब पैदा नहीं होगी? जब वो किसी चीज की तलब ही नहीं होगी उसके अंदर। तलब क्यों नहीं होगी कि वो उसकी अगर तकाजा है तो वो तकाजों की तकमील किए बैठा है। बाकी अगर ख्वाहिशात हैं तो उनसे वो वैसे यारी हो चुका है। तो हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया कि मुझे मेरे मुर्शिद करीम ने इतना नवाजा है कि किसी चीज की तलब ही नहीं रही। ठीक हो गया ना? तो कहा कि जब तक कोई तलब रहेगी तो इस्तग़ना नहीं पैदा हो सकता। कानून बता दिया कि आपको पुर नजर होना है। अब देखिए ना, एक बंदा लालच में पड़ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब आप कहेंगे ये लालची बंदा है, वो दौलत जमा कर रहा है, वो कहता है जी मेरी हिरती नहीं पूरी हो रही। नहीं, ये हिरस उसने खुद खत्म करनी है। बात तकाजों की हो रही है और हिरस की नहीं हो रही। हिरस को खत्म करना है। ये हिरस और हवस जो है, ये तो आपके अपने कंट्रोल में है, आप उसे खत्म करेंगे तभी इस्तग़ना की तरफ चलेंगे। फिर दूसरा मरहला आ जाता है तकाजों का। तो तकाजों की तकमील उसके दर्जे हैं। जिस्मानी तकाजे हैं तो ज़हनी तकाजे हैं तो रूहानी तकाजे हैं। जब आप उनकी तकमील करते हैं तो ज़हन ऐसा बन जाता है कि वो अल्लाह वाला ज़हन बन जाता है। बंदा हर चीज की काविश करके नतीजा अल्लाह पे छोड़ देता है। अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, ये कैफियत तब हासिल होती है जब बंदे का पेट भरा हो और वो पुर नजर हो। अब देखे ना, आप अपने घर में, अब मैं अपने घर में रहते हुए दूसरों के घर को सराहता रहूं, तो ये फलाने का घर बड़ा अच्छा है, मेरा घर उससे कमजोर है, तो मैं इस किस्म के कंपैरेटिव में अगर पड़ा रहूंगा तो इस्तग़ना थोड़े पैदा हुआ मेरे अंदर।
बिल्कुल नहीं हुआ जी सर।
आपको समझ आ गई ये बात की के क्या किया?
आ रही सर, आ रही
जी।
थैंक यू सो मच सर, मेरे तो हो गए
जी। और
अस्सलाम वालेकुम सर
जी। वालेकुम अस्सलाम
सर, सवाल है, हम मखलूक हैं, आपने फरमाया मखलूक की सरों के ऊपर उठकर अल्लाह के दुश्मनों को पूछें,
बड़ी कीमती बात दरियाफ्त की आपने। पहली बात तो ये कि हमें इस चीज का शऊर होना चाहिए कि हम मखलूक हैं। जब हम मखलूक हैं तो हम खालिक के सामने बेबस हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं। हाँ या नहीं? जब हम खालिक के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होकर खालिक की तर्जों को समझ लेंगे कि खालिक हमसे क्या चाहता है, तो खालिक तो हमें अपना नायब बनाना चाहता है, तो हम पूरी कायनात के सरबरा बन जाते हैं, बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी उलझन का सफाया हो जाना चाहिए कि एक तरफ इंसान पूरी तरह मुख्तार है, मालिक है, और दूसरी तरफ वो मोहताज है, मजबूर है, बेबस है, लाचार है। वो अल्लाह के हवाले से मजबूर और बेकस और लाचार है। अल्लाह ने पैदा किया, वो पैदा हो गया। अल्लाह ने जिंदा रखा, वो जिंदा रहा। अल्लाह ने मारा, वो मर गया। अल्लाह ने उसे खिलाया, उसने खा लिया। अल्लाह ने पिलाया, उसने पी लिया। अल्लाह ने पहनाया, उसने पहन लिया। ये लेकिन अब वो कोई अल्लाह का ज़हन समझने के बाद जब कोई काम करने बैठेगा तो वसाइल उसके सामने दस बस्ता खड़े हो जाएंगे। समझ आया कि वसाइल पे दस्तरस हासिल करने का तरीका ये नहीं है कि आप पैसे जमा करें। वसाइल पे दस्तरस हासिल करने का असल तरीका अल्लाह की तर्जों को समझकर अल्लाह के लिए काम करना है। जब आप अल्लाह के लिए काम करेंगे तो वसाइल आपकी दस्तरस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के नायब बन जाएंगे। इन्नी जायलो फिल अर्दे खलीफा, मैं चाहता हूँ जमीन में अपना नायब बनाना। ठीक है, अल्लाह ने इंसान को, नौ इंसानी को अपनी नियाबत के लिए तख्लीक किया। नौ इंसानी पड़ गई वसाइल के चक्कर में और खुद को मोहताज और गदागर बना के बैठ गई। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तर्जों को समझ लेगा, अल्लाह के ज़हन को समझ लेगा, और उसका तरीका मैंने बड़ी दफा किया है कि कुरान में जितने डूज एंड डोंट्स हैं वो अल्लाह की तर्जों को समझाने का तरीका है। आप कुरान के डूज एंड डोंट्स को पकड़ लें तो आप अल्लाह के ज़हन को समझ जाएंगे, अल्लाह क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। दोनों चीजें वाजे हो गई ना? अब ये इधर उधर की सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये वो लिस्ट है जिसको खुद आप खुद कुरान से मुरतब करते हैं। कौन सी? डूज एंड डोंट्स की। जब आपको पता चल गया कि अल्लाह ने किस चीज से मना किया, किस चीज का हुक्म दिया, और उस हुक्म की हिकमतें भी आप पे वाजे हो जाएं, तो आप अल्लाह का दिन समझ गए ना। मसलन अब अल्लाह ने कहा कीमो सलात वातो ज़कात, ठीक है कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो, ये तर्जमा किया हम लोगों ने। जब हम इसकी असल हिकमत को समझ जाएंगे कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ ताल्लुक कायम कर लो और खुद को डेवलप करोगे तो मैं तुम्हें काम से लगा लूंगा। कद अफलहा मन तज़क्का, हमने कर दिया फलाह पाई। कद अफलाहा, सिर्फ उसे काम मिलेगा। अफलाह का मतलब कामयाबी नहीं है, काम मिलने। मन तज़क्का, जिसने खुद को डेवलप किया। तो जब आप अल्लाह की तर्जों को समझ लेंगे तो आप खुद को डेवलप करने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे या नहीं?
बहुत ज्यादा।
चलो आपको जी अल्लाह ताला आपकी दिलचस्पी को शौक और शगफ को मजीद बढ़ाए। बात वाजे हो गई आपकी?
इरशाद पूरी कायनात के साथ
पूरी कायनात किस पे कायम है?
पूरी कायनात इसार पे कायम।
अच्छा इसार जी
ये गलती मायने असल मायने क्या होता है?
असल मायने भी यही है। देखे माँ कुर्बानी देती है, इशार करती है, अपना खून बच्चे को पिलाती है तो बच्चा जवान होता है, बच्चा बड़ा होता है। हाँ या नहीं? बाप धूप में मेहनत करता है, बारिश में मेहनत करता है, छाबड़ी लगाने से लेकर सड़क कूटने तक, दफ्तरों में काम करने से लेकर दुकान पे 24 घंटे की ड्यूटी देने तक या 18 घंटे की ड्यूटी देने तक, वो सब किस लिए करता है? औलाद के लिए। ठीक हो गया ना? इसी तरह देखिए कि पौधा ग्रो कर रहा है, वो ऑक्सीजन बना रहा है किसके लिए? दूसरी मखलूक के लिए। सूरज अपनी रोशनी यानी कि गर्म करके यहाँ दुनिया की तरफ फेंक रहा है, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मखलूक के लिए। चांद अपनी चांदनी की में जो शेरीनी जो मिठास पैदा करने के असरात पैदा कर रहे, ये सब क्या चांद का इंसान तो है? अल्लाह हाजिर कयास हर बंदा कायनाती इशार पे चल रहा है। अल्लाह ने कायनात को इंसान के लिए बनाया। हाँ या नहीं? देखे ना, जब आप पैदा हुए तो दुनिया पहले से मौजूद थी, जब आप फौत होके चले जाएंगे दुनिया तब भी मौजूद रहेगी। यानी दुनिया को इंसान के लिए पैदा किया ताकि वो इसको इस्तेमाल करे। ठीक हो गया? अब जब आप इसको इस्तेमाल करने के जज्बे से इस्तेमाल करें तो कायनात इशार नहीं कर रही आपके लिए, लेकिन आगे हमने क्या दूसरों के लिए इशार किया, ये हमें खुद से पूछना चाहिए कि जब हम कायनात में कोई मुनफरिद कोई आला मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो क्या हमें भी ये तर्ज फिक्र अपनानी नहीं चाहिए जिसमें इशार हो? फसल रब्बे का वन हर इन्ना कायना कल कौसर फसल रब्बे का वन हर, यानी अल्लाह से ताल्लुक कायम रखो और इशार करो। हमने यहाँ कुर्बानी कर दिया लफ्ज, नहर का मतलब कुर्बानी, ऊँट की कुर्बानी। अब आपने कभी सारी जिंदगी ऊँट कुर्बान किया? यानी कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, तो फिर इशार का क्या मतलब हुआ? इशार करना यानी दूसरे के लिए ऐसा काम करना कि उसका कोई असर मुरत्तब हो। ठीक हो गया? सारी बात जी। भाई अल्लाह क्या कर रहा है अपनी मखलूक के लिए? इशार तो कर रहा है जी। देखे ना, अल्लाह रब्बे करीम वसाइल तख्लीक कर रहा है और इतने वाफर तख्लीक कर रहा है। आपको कभी हवा की कमी पेश आई? कभी पानी की कमी महसूस हुई? तो यही मतलब रोशनी की कमी महसूस हुई? ये चार पांच चीजें जो बुनियादी वसाइल हैं वो सारे के सारे अल्लाह ने वाफर पैदा किए और सबके लिए किए और सबको दस्तयाब है। اور یہ سارا نظام بنانا اللہ کا اشار نہیں ہے؟ اللہ نے کتنا دماغ لگایا ہوگا، کتنا محنت سے سوچا ہوگا، کتنا باریکی سے سوچا، یہ سب کیا ہے؟ اشار. تو جب آپ کسی کا بھلا سوچ رہے ہیں تو آپ اس کا یہ اشار ہی تو کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی ذہنی انرجی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی ارشاد.
ہمارے کائنات کے درمیان ایک مخفی رشتہ ہے سر، وہ مخفی رشتہ کیا ہے آپ وضاحت کریں گے؟
مخفی رشتہ یہ کہ کائنات کا میرا دونوں کا مالک اللہ ہے، اسی لیے کائنات کا کوئی فرد آپ کی خدمت سے انکار نہیں کرتا. سورج یہ نہیں کہتا کہ میری دھوپ مت لو، چاند یہ نہیں کہتا میری چاندنی مت استعمال کرو، ہوا یہ نہیں کہتی کہ میں تجھے تیرے اندر نہیں جاؤں گی، پانی نہیں کہتا کہ میں آپ کو نہیں پینے دوں گا. کیا مطلب ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے ان کا؟ رشتہ یہ ہے کہ ان کا اور میرا مالک ایک ہی ہے، ملکیت کا رشتہ ہے. وہ بھی ایک ہی خالق کی مخلوق ہے، میں بھی اسی خالق کی مخلوق ہوں. اللہ نے مجھے سرفراز کیا علم الاسماء عطا کر کے اپنی روح پھونک کے، لہذا میں ان سے سپیریئر ہو گیا. لیکن میرا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کی وجہ سے. جب ہم کسی چیز کو اپنی ملکیت بناتے ہیں تو یہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مالک تو اللہ ہے. میں جب کسی چیز کا مالک بنتا ہوں تو گویا میں اس چیز کی ملکیت کا دعویٰ کر کے اللہ کی ملکیت توڑ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے وہ مخفی رشتہ. مخفی رشتہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے اس کا بھی میرا بھی، وہ مالک ہے اس کا بھی میرا بھی، وہ رب ہے اس کا بھی میرا بھی. تو اللہ کی ذات جو ہے یہ دراصل سارے ہی رشتوں کی بنیاد ہے اور جڑ ہے، اور یہی پیغمبرانہ طرز فکر ہے کہ ہم اس طرح سوچنا سیکھ لیں کہ یہاں دنیا میں کسی چیز سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ ہے تو اللہ کی وجہ سے. بڑی سمپل سی مثال ہے، دیکھیں نا، ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو کس رشتے سے بات کر رہے ہیں؟ عظیمی ہونے کے ناطے، کیونکہ آپ اور میں ایک ہی ٹیچر کے شاگرد ہیں. تو جب ہم ایک ٹیچر کے شاگرد ہونے کی وجہ سے آپس میں اتنا پیار محبت اور اتنی چاہت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے، ایک ہی خالق کی تخلیق ہونے کے ناطے، ایک ہی رب کی پروردہ ہونے کے ناطے، ایک ہی پروردگار کے پروردہ ہونے کے ناطے، کیا ہمیں آپس میں کتنا زیادہ پیار محبت اور انس رکھنا چاہیے؟ آپس میں، انسانوں میں بھی اور دوسری نو کے ساتھ بھی، دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی. جاتی ہوگی بات؟ جی
سر، ایک اور سوال کر سکتے
ہیں؟ جی جی ضرور.
سر
آپ کلمہ پڑھیں ذرا، کلمہ پڑھیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے تو الہ کہتے ہیں فقیر کو، یعنی جس کے ہم محتاج ہوئے. الہ کہتے ہیں جس کا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوا نا اللہ کا. تو کلمہ پڑھ کر اصل میں ہر مسلمان یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا فقیر ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن چونکہ ہم نے یہاں سے ترجمے میں معبود ترجمہ کر دیا الہ کا، لہذا سارے پٹری سے اتر گئے، تو فقیری الگ سے انٹروڈیوس کرانی پڑی بڑوں کو، ان کو سمجھاؤ کہ فقیری کیا ہے. فقیری کا مطلب ہے اللہ کا محتاج ہونا، میں اللہ کا فقیر ہوں. یعنی میں صرف محتاج ہوں تو اللہ کا ہوں، باقی ساری کائنات میری محتاج ہونی چاہیے.
بات کرنی کیونکہ صاحب ہم نے اتنا کام کیا، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اتنا کام کیا.
جی دیکھے نا، جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو واحد چیز جو بچتی ہے وہ محاسبہ ہی ہے. ہم جتنا اپنا احتساب کریں گے اتنا اس کی طرف بڑھیں گے. اب روزانہ چیک کریں کہ آج مجھ سے کہاں پہ ایسا کام ہوا جو کہ فقیری طرزوں کے خلاف تھا. یعنی میں اللہ کا فقیر تھا، کہاں میں نے اولاد سے توقع کی، کہاں میں نے اپنے بھائی سے توقع کی، کہاں میں نے ماں سے توقع کی، کہاں میں نے شوہر سے توقع کی، کہاں میں نے محلے والوں سے توقع کی. تو جوں جوں آپ کی توقعات ٹوٹتی چلی جائیں گی، تو آپ اللہ کے فقیر بنتے چلے جائیں گے. فقیر کا مطلب ہے اللہ کا فقیر ہونا. فقیر کا مطلب گدا گرب ہونا نہیں ہے، لوگوں سے بھیک مانگنا نہیں ہے. فقیر کا مطلب ہے سوائے اللہ کے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، کسی سے نہیں چاہنا، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی. اللہ خوش رکھے جی. جی ویلکم.
بہت خوبصورت بازار
اللہ نے کروائی. جی اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام. نگاہ خود بھی ایک اسپیس ہے، نگاہ خود بھی ایک اسپیس ہے. اب اوپر سے ہماری طرز فکر ہے، ٹھیک ہے، وہ طرز فکر نگاہ کو کہیں کام کرنے دیتی ہے کہیں نہیں کرنے دیتی. جب ہم شیطانی طرزوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہم اندر دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، باہر دیکھنے میں کھو جاتے ہیں. اور جو کھو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کھوتا کہتے ہیں. تو جب ہم اسپیس کو باہر ڈھونڈتے ہیں تو وہ سارے کا سارا الوژن کہلاتا ہے. جب ہم اپنے انر میں دیکھتے ہیں اور انر میں اسپیس کو سمجھتے ہیں تو وہ طرز ادراک کہلاتا ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اگر آپ کہیں گے سیب، تو اب آپ سیب چاہے بیداری میں استعمال کریں یا سیب کو خواب کے حواس میں کھائیں، سیب ایک جگہ گھیرے ہوئے آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں خواب میں تو آپ کو اس کی گولائی محسوس ہوتی ہے. تو آپ نے اسپیس کو ہی دیکھا نا، کیا کھا رہے ہیں؟ اسپیس کھا رہے ہیں. آپ وہاں خواب میں ایک درخت دیکھتے ہیں تو وہ درخت کیا ہے؟ اسپیس ہے نا. اللہ حاضر قیاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ اتنے ہزار میل دور ہے، ٹھیک ہے، یہ باہر دیکھنے کی اسپیس ہے. لیکن خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں ابھی یہاں کھڑا ہوں، کراچی میں ہوں، ساتھ ہی اگلے لمحے میں دیکھتا ہوں کہ میں مدینے میں روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوں اور درود و سلام پیش کر رہا ہوں. تو وہ سارا اسپیس کہاں گیا؟ ذہن نے اس کو لپیٹ دیا. और वो एक सेकंड के हजारवें हिस्से में मैं वहाँ पहुँच गया ख्याल की रफ्तार से। तो गोया स्पेस को कवर करने के लिए जो चीज चाहिए वो है रफ्तार। अब एक है जिस्म की रफ्तार, एक है जहन की रफ्तार और एक है रूह की रफ्तार। ठीक हो गया ना? तो जितनी रफ्तार तेज होगी आप उतनी तेजी से स्पेस कवर कर लेंगे। अब दुनिया में देखें ना, यहाँ से आप पेशावर जाएं, अब अगर पैदल जाएंगे तो आप शायद दो महीने में पहुँचे, ठीक है। आप ट्रेन में जाते हैं तो दो दिन लगते हैं, ठीक है, 36 घंटे लगते हैं। अब बस में जाएं तो वो 24 से 28 घंटे लगते हैं। आप अपनी गाड़ी में जाते हैं आप 20 घंटे में पहुंच जाते हैं, फर्ज करें। आप बाहर जाते हैं तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या हुआ, स्पेस को आपने कवर किया। तो रफ्तारें हैं, एक आपके जिस्म की रफ्तार है, एक आपके मादी वसाइल की रफ्तार है, ठीक है। मिसाल वाजे हो गई ना? बिल्कुल। हवास सारे के सारे, निगाह, समाप्त, शामा और जायका और लम्स, ये सारे हवास निगाह के दर्जे। तो सारा खेल हवास की रफ्तारों का है। किसी को हिस्सियात कहते हैं। ठीक हो गया? जाहिर है कि गौर व फिक्र, तफक्कुर, ये मिसालें जो आपको अर्ज की मैंने, इसी तरह हुजूर मुर्शिद करीम ने कितनी मिसालें दी हैं उसमें, तो इन पे गौर करना। अब गौर व फिक्र का एक इस जेल में एक बात समझने आसान हो जाएगा। गौर व फिक्र के भी दो किस्में, एक है शौरी गौर व फिक्र और एक है लाशौरी गौर व फिक्र। जब हम शौरी गौर व फिक्र करते करते लाशौरी तफक्कुर शुरू कर देते हैं, तब जाके असल गौर व फिक्र शुरू होता है, तभी असल बातें आप पे खुलना शुरू हो जाती हैं। देखे ना, ये बात हमने बड़े इसरार से कई दफा की है कि बात आपने खुद समझनी है, समझानी अल्लाह ने। क्या मतलब हुआ कि जब तक हम एक चीज पे शौरी तफक्कुर करते करते लाशौरी तफक्कुर तक नहीं पहुंच जाते, कोई चीज हमारे अंदर खुलती नहीं है, यानी उसकी हकीकत हमारे पे रोशन नहीं होती या वाजे नहीं होती। ठीक हो गया?
ठीक है सर, एक सवाल और
देखिए, कॉमन सेंस का मतलब है सारे जानते हैं, और प्रॉपर सेंस वो है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मतलब अब आप गौर करें, ये जो शुरू के जुमले हैं कि महसूसियत ही रुकावट बन जाती है, यानी हम जो महसूस करते हैं वही रुकावट बन जाती है वराय महसूसियत को समझने में। यानी जो कुछ मैं समझा हुआ हूँ ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। और उसका तरीका उन्होंने फरमा दिया कि जब तक ये कॉमन सेंस, यानी कि जो सब समझते हैं, वो है आपका जनरल महसूसियत का चक्कर। मसलन सारे चांद को चांद देख रहे हैं, सारे सूरज को सूरज देख रहे हैं, ठीक हो गया ना। जब सारे सूरज को सूरज देख रहे हैं और समझ रहे हैं रोशनी वहाँ से आ रही है, लेकिन एक बंदा जो रूहानी तर्जों से वाकिफ हो गया, वराय महसूसियत में दाखिल हो गया, वो कहता है कि सूरज एक स्याह तवा है, एक स्याह टिकिया है, एक बहुत बड़ी स्याह काली स्याह टिकिया है, वो जमीन की रोशनी को गर्म करके पलटा रहा है। अब ये जो बात है ये प्रॉपर सेंस की बात है, यानी कि खास बंदे ने कही है ये बात, हर बंदा यानी कॉमन सेंस में नहीं आ गई। बात वाजे हो गई? इरशाद देखिए अल्लाह से रब तो आपका हर वक्त बरकरार है, आपका सांस चल रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी आंखें, आपका मैदा, आपके वदूद सारे काम कर रहे हैं ना, तो ये कौन चला रहे हैं? अल्लाह का निजाम, ठीक है, अल्लाह का निजाम चला रहे हैं। अब हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना है तो क्या करेंगे? अल्लाह के इस निजाम की तरफ मतवज्जो होना है ना हमने। कैसे तवज्जो देंगे? मैं ये बात बारहा कर चुका हूँ कि सांस पे गौर करें। अब सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता लें और लेते जाएं, पेट भरे। ये सांस का सऊदी रुख है। जब आप सांस अंदर लेते हुए इस पे तवज्जो देंगे तो आपका ध्यान असल में अंदर से कहाँ गया? अल्लाह की तरफ। जब आप हर वक्त सांस लेते हुए सोचेंगे कि ये सांस मुझे कौन दिला रहा है, तो आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? भाई देखो ना, हम मखलूक हैं, हम अल्लाह मियां को जफ्फी तो नहीं डाल सकते। मखलूक होने के नाते हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ रख सकते हैं, और तवज्जो को अल्लाह की तरफ रखने के लिए अल्लाह बार बार कहता है मेरी निशानियों पे गौर करो। तो सांस लेना कोई छोटी निशानी है? ये दिल का धड़कना कोई छोटी निशानी है? आपको सर्दी लग रही है, ये क्या किस चीज की अलामत है? आपको गर्मी लग रही है तो ये किस चीज की अलामत है? क्या ये निशानियाँ नहीं है? हम पता नहीं क्या निशानियाँ ढूंढना चाहते हैं। ये हमारे पूरे वजूद के अंदर अल्लाह की निशानियाँ ही तो बिखरी हुई हैं। अगर हम इन्हीं पे गौर करना सीख लेंगे तो हमारा ध्यान किधर जाएगा? इस सारे निजाम को बनाने वाली हस्ती की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? तो जितना ज्यादा आप ध्यान अल्लाह की तरफ रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी दोस्ती होती चली जाएगी अल्लाह के साथ। लेकिन अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बारे में सोचेंगे, अल्लाह के निजाम पे गौर व फिक्र करेंगे, तो आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता जाएगा या नहीं जुड़ता जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका जी। और कोई सवाल? चले हो गए तो खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। اللہ آپ کو خوش رکھے جی. تھینک یو ویری مچ اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے سوال پوچھنے کا شکریہ.
آپ کا شکریہ.
چلو اللہ نے کرم کیا, اللہ نے کرم کیا, بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ.